वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आओ दर्शन भिक्षा दे दो।
आया हूँ शरण तिहारे,
शरण तिहारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के। सागर में जीवन नैया,
भव सागर में जीवन नैया।
डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले। निर्बल हूँ मेरा हाथ पकड़ लो, हे प्रभु मेरे सहारे,
हे प्रभु मेरे सहारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के।
कदम कदम पर अंधियारा है,
कदम कदम पर अंधियारा है।
सूझत ना ही मोहे, सूझत ना ही मोहे। जीवन की तू ज्योत जला दे, जीवन के उजियारे,
जीवन के उजियारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे। जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु। आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आओ दर्शन भिक्षा दे दो।
आया
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रभु के वचन की संगति में बलवंत हो रहे हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को योना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय से आरंभ करेंगे, लेकिन इसके पूर्व कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदय और विचारों को खोल दीजिए, हमें एकाग्रतापन दीजिए ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपके जीवित वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपका वचन जीवित है, जो दोधारी तलवार से भी तीखा और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। आज हमारे जीवनों से आप बातचीत करें, हमारे श्रोता भाई बहनों के जीवन से आप बातचीत करें जो दुखी हैं, जो निराशा में हैं, जो परेशानियों में हैं, जो तकलीफ और कष्ट में हैं, जो अपने जीवन से थक कर अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। प्रभु जी, आप उनसे बातचीत करें ताकि वे इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें रचा है। उनके हर एक परेशानियों के लिए, उनके हर एक पाप और अपराधों के लिए आपने अपना जीवन क्रूस पर दे दिया ताकि वे बचाए जाएं। पिता परमेश्वर, आप उनके हर एक पापों को, हर एक अपराधों को क्षमा करें, उनके जीवन को आज अपने वचन के द्वारा बदल दें ताकि वे आपकी निकटता में आने पाएं। इस समय फिर से बार हम सबको आज के इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे पहले व्यक्ति थे, अर्थात वह सर्वप्रथम पुनरुत्थान है। और हमने ये भी देखा कि यीशु ने अलग अलग चमत्कार किए और मृतकों को जीवित करने के लिए उन्होंने एक ही तरीका अर्थात विधि को अपनाया। उसने लोगों को पुकारा, लाजर को उसने पुकारा और उसने यायर की बेटी को भी पुकारा और वह भी जीवित हो उठी। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 1 और 2 पद में। यहाँ पर लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, बैतनिया मरियम का निवास स्थान था। सुसमाचार के लिखे जाने के समय सन 90 तक मरियम के बारे में सभी जान गए थे कि उसने मसीह के पाँव में इत्र डाला था। उसकी सुगंध तो आज भी संसार में व्याप्त है। यीशु ने कहा था कि उसकी भक्ति संपूर्ण संसार में जहां भी सुसमाचार का प्रचार होगा अर्थात किया जाएगा, वह जानी जाएगी। मेरे विचार में प्रख्यात मसीही अगुओं की अपेक्षा उन दीन मनुष्यों का स्वर्ग में अधिक नाम होगा जिनकी भक्ति मरियम की तरह है। यही मार्था का घर था। यीशु वहां आता रहता था। यह वही मार्था है जो यीशु से मरियम की शिकायत कर रही है कि वह घर के कामों में हाथ बटाने की अपेक्षा यीशु के पास बैठी थी। यीशु ने उससे कहा कि सांसारिक बातों की अपेक्षा परमेश्वर का वचन अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, मैं पत्नी या माँ से बढ़कर किसी अन्य बॉस को नहीं जानता। वह पूरे घर की स्वामिनी थी। बड़े से बड़ा अफसर भी अपनी माता या पत्नी की आज्ञा का पालन करता है। यही एक मसीही महिला की बुलाहट है। स्त्री चाहे घर में काम करे या वह बाहर व हर स्थान में मसीह की सेवा कर सकती है। स्त्रियां अर्थात महिला सभाओं में जा सकती हैं और बच्चों में बाइबल अध्ययन भी करवाती हैं। पवित्र आत्मा अलग अलग वरदान देता है और सबके लिए काम अलग अलग होता है। हम यूहन्ना 11 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ध्यान दीजिए कि ये दीन जन है जो मसीह को बाध्य नहीं करते। इन स्त्रियों ने मसीह को सूचना दे दी कि लाजर बहुत बीमार है। शेष कार्य मसीह की इच्छा पर छोड़ दिया गया। आज अनेक जन मसीह को आज्ञा देते हैं कि वह उनकी प्रार्थना के अनुसार किसी रोगी को चंगा करे। प्रिय मित्र, यीशु इस प्रकार काम नहीं करता है। मरियम और मार्था अपने प्रभु को जानती थी, अतः उन्होंने केवल इतना ही कहा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यीशु लाजर से प्रेम करता था। हम गलतियों की पत्री 4 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस के द्वारा सुनते हैं कि प्रभु उससे प्रेम करता है। यूहन्ना अपने आप को यीशु का प्रिय शिष्य कहता है। पत्रस ने भी यही कहा कि यीशु हमसे प्रेम रखता है, वह आपसे भी प्रेम करता है। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह मुझसे प्रेम करता है। जो भी परमेश्वर की संतान है उससे यीशु प्रेम रखता है। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ध्यान दीजिए, यीशु उस समय बैतनिया में नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि विश्वासियों को बीमार नहीं होना चाहिए। प्रिय मित्र, क्या रोग परमेश्वर की इच्छा से आते हैं? मेरे विचार में लाजर को यहाँ होना था कि हमें इस प्रश्न का उत्तर दे। रोग का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है। सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में हैं। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। प्रिय मित्र, इसका अर्थ यह है कि परिस्थितियां किसी मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रेम की निर्णायक नहीं है। पौलुस 1 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5 पद में कहता है कि प्रभु के आने तक न्याय मत करो, क्योंकि वही छिपी हुई बातें प्रकट करेगा। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 11 अध्याय उसके 5 और 6 पद में, और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। यह बड़ी ही अजीब बात है। आप बीमार हो या स्वस्थ, वह आपसे सदा प्रेम करता है। आप उसे प्रेम करने से नहीं रोक सकते हैं। आप पूछेंगे या कहेंगे कि वह परेशानियां क्यों आने देता है। मेरे मित्र, यह तो मैं नहीं जानता, पर यह निश्चय जानता हूं कि वह आपसे प्रेम करता है। आप उसमें विश्वास करें या ना करें, वह आपसे प्रेम करता है। आप सूर्य को चमकने से नहीं रोक सकते हैं, परंतु आप उसके प्रकाश से अंधकार में जा सकते हैं। आप छतरी लगाकर धूप रोक सकते हैं। उसी प्रकार आप परमेश्वर के प्रेम को बाधित कर सकते हैं। इस प्रेम के कारण हम उसके सामने अपनी समस्याओं को रखने का साहस कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसे आज्ञा दें। मेरे मित्रों, परेशानियां हमारे विश्वास की परख हैं। वे हमें प्रार्थना में घुटनों पर लाती हैं। मूसा जंगल में परेशानियों के समय परमेश्वर को पुकारता था। हिजकिया ने अशुरों का धमकी भरा पत्र परमेश्वर के सामने रखा था। मेरे मित्रों, मुझे और आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना है, चाहे हम मौत की घाटी में से क्यों ना जा रहे हो। वह हमें भरोसा रखना सिखाता है। हमें अपने आंसुओं, दुख और कठिनाइयों के परे देखना है कि हर परिस्थिति में उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। जी हाँ, रोग मृत्यु के लिए नहीं होते हैं। वे वास्तव में परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए भी होते हैं। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी होता है वह उसकी महिमा प्रकट करने के लिए ही होता है। हम मार्था के साथ कठोरता से पेश आते हैं, परंतु प्रभु उससे प्रेम करता है, चाहे वह अन्य कामों में व्यस्त क्यों ना रहती हो। ऐसा लगता है कि यीशु ने लाजर पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह मर गया। इसमें हमारे लिए एक सबक और सीख है कि यीशु मानवीय भावनाओं के वश में नहीं था, अन्यथा वह तुरंत बैतनिया को चला आता। वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करता था। लाजर की मृत्यु के पीछे भी उसका उद्देश्य था। मेरे मित्रों, वह हमारे प्रिय जनों को मरने देता है क्योंकि उसमें उसका उद्देश्य छिपा रहता है। उसके मार्ग सिद्ध हैं। यीशु मनोभावनाओं के आधार पर काम नहीं करता क्योंकि इससे लोग बिगड़ जाते हैं, जैसे माता पिता का भावनापूर्ण प्रेम बच्चों को बिगाड़ देता है। उसका प्रेम मनुष्यों के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए लाभकारी है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे और क्या तू फिर वहीं जाता है? यहां पर ध्यान दीजिए, यीशु पहले वहां था और उसकी जान को भी खतरा था और यह उत्पन्न हो गया था कि उसे लोग मारना चाहते हैं, फिर भी वह उसी स्थान में जा रहा है। हम यूहन्ना 11 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उज्याला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को काम दिया तो कोई खतरा उसे नहीं रोक सकता। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। परमेश्वर ने हम सबको काम दिया है। आप उसे कल पर नहीं डाल सकते हैं, आप सूर्यास्त का समय नहीं बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपका काम पूरा होने तक आप न तो मनुष्य से और न ही शैतान से हानि उठाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को कोई भी बाधित नहीं कर सकता, परंतु यदि आप यीशु से अलग हो गए हैं तो संकट उमड़ आएगा। यीशु के साथ खतरों में भी आपका बाल बाका नहीं होगा। मेरे मित्र, यदि आप जगत की ज्योति यीशु को त्याग कर अंधकार में चले जाएंगे तो निश्चय ही आप ठोकर खाएंगे। यदि मार्था के घर में अंधकार के समय ज्योति चमकनी थी तो यीशु को वहां पर जाना आवश्यक था। हम यूहन्ना 11 अध्याय उसके 11 से 15 पद में पढ़ते हैं, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। प्रिय मित्र, शिष्य समझ नहीं पाए कि यीशु ने क्यों कहा लाजर सोता है। आज भी लोगों में इसकी समझ नहीं है। विश्वासी की देह कब्र में सोती है और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि विश्वासी देह में अनुपस्थित होता है तो प्रभु के साथ उपस्थित रहता है, शरीर पुनरुत्थान तक सोता रहेगा। मृत्यु परिश्रम से विश्राम है। यह वह समय है जब पुनरुत्थान के दिन की तैयारी की जाती है। मेरे प्रिय, विश्वास की मृत्यु के लिए सोना शब्द अत्यधिक सुहाना है। एक दिन मसीह यीशु फिर से आएगा और हम मृत्यु की नींद से जागेंगे, क्योंकि वह हमें नाम ले लेकर पुकारेगा। पुनरुत्थान, जिस यूनानी शब्द का अनुवाद है, उसका मूल अर्थ है खड़ा होना। कुछ विद्वानों का कहना है कि पुनरुत्थान आत्मिक है, शारीरिक नहीं। उनके लिए C.S. लुईस का उपहासपूर्ण प्रश्न है, यदि आत्मा खड़ी होगी तो उसका विन्यास क्या होगा? पुनरुत्थान और शरीर का होगा। शरीर खड़ा होगा, आत्मा ना तो मरती है और ना ही सोती है। मेरे मित्रों, मृत्यु एक सच्चाई है, तो पुनरुत्थान भी एक सच्चाई है। मृत्यु के विषय वैज्ञानिक भी हतप्रद हैं। मनुष्य का अंत होता है तो यीशु का आरंभ होता है। पुनरुत्थान भी एक सच्चाई है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। ध्यान दीजिए, वह सोच रहा था कि उसे उसके प्रभु के साथ मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके मन में यह कामना थी। मेरे विचार में थोमा ईमानदारी से कह रहा था जैसे पत्रस ने कहा था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 17 से 19 पद में पढ़ते हैं, सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यरूशलेम के सुनहरे द्वार से बैतनिया की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की थी। यरूशलेम से अनेक यहूदी वहां चलकर आए कि मरियम और मार्था को सांत्वना दें। इसका अर्थ यह है कि लाजर का परिवार वहां प्रतिष्ठित परिवार था और यरूशलेम में भी जाना जाता था। प्रिय मित्र, यह सच है कि जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आसपास के लोगों में ज्यादा प्रतिष्ठित होता है तो लोग उसे जानते हैं, और यहाँ इस अध्ययन के द्वारा हमें इस बात का पता चलता है कि लाजर, मार्था और मरियम भी प्रतिष्ठित लोगों में से थे, और यही कारण था कि लोग यरूशलेम से चल करके वहां तक पहुंचे जहां लाजर मरा है, और वहां पर मार्था और मरियम को सांत्वना दे रहे थे। मेरे प्रियो, यह सच है कि हम इस संसार में रहते हैं और आज नहीं तो कल हम में से प्रत्येक को इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, और हम में से हर एक की एक आशा है कि हम कहीं न कहीं जरूर जाएंगे, अर्थात स्वर्ग या नरक। क्योंकि हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पर मरता है तो शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, और यही इनका अलग होना ही मृत्यु कहलाता है। मेरे मित्रों, आज इस संसार से कई लोग गुजर चुके हैं, इस संसार को छोड़ करके चले जा चुके हैं, लेकिन आज भी हम कई बार उन्हें याद करते हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि वे इस समय कहां पर हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, अर्थात वह जीवन के दाता हैं, क्योंकि वह स्वयं मृतकों में से जी उठे। हम सारे मानव जाति के लिए वह कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफन किए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आज भी वो जीवित हैं, और वही प्रभु आज मुझे और आपसे भी कहते हैं कि वो मुर्दों को जीवित करने में सामर्थ्य रखते हैं। और यहाँ पर हम यही बात देखते हैं कि उसे मालूम हुआ कि लाजर बीमार पड़ा है, और जब वहां पहुंचा तो उसे बताया गया है कि लाजर मर चुका है और उसे कब्र में रखे 3 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, और फिर भी हम पाते हैं कि वो लाजर को जीवित करता है। हम आने वाले समय के अध्ययन में इसे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रभु जीवित और सामर्थी है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मनुष्य को एक दिन मरना है और फिर से जीवित होना है, क्योंकि हमारा न्याय का होना अवश्य है। बाइबल हमें इसी बात को बताती है कि मनुष्य का मरना और न्याय का होना अनिवार्य है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप कहां पर हैं? मेरा और आपका जीवन किस ओर है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह जीवन का दाता है जो लाजर को जीवित करेगा? यायर की बेटी को भी जीवित किया, और इतना ही नहीं, उसने एक विधवा के बेटे को भी जीवित किया। और इस प्रकार से हम पाते हैं कि जीवन का दाता सिर्फ परमेश्वर है और वह प्रभु यीशु है। डॉक्टर भी आज परेशान है कि वह जीवन को नहीं दे सकते हैं। मेरे मित्र, आज के अध्ययन के द्वारा हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। जिस प्रकार वह लाजर से, मार्था से और मरियम से प्रेम करता है, उसी प्रकार वह हम सब मानव जाति से प्रेम करता है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि बीमारी का कारण हमारा पाप है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह इससे बड़ी बात है कि परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन के हर एक पल से लेता है, क्योंकि उसके बिना अनुमति के कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, यदि आज आप बीमार हैं, दुखी हैं, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे इस समय में भी प्यार करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं ताकि उसके बीमारी के द्वारा से, आपकी बीमारी के द्वारा से उसको महिमा मिल सके। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिल करके उस परमेश्वर के निकटता में आए और अपने सारे तकलीफों को उसके पास ले आए, उसे बता दें। जिस प्रकार मार्था और मरियम ने भी लाजर की बीमारी के बारे में प्रभु यीशु मसीह को सूचना दी, आज हम भी अपनी तकलीफों को उसके पास लाएं, वह भी हमारा निवारण कर सकते हैं। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सचमुच में जीवित परमेश्वर हैं। आप मृतकों में से जी उठे हैं और आज भी आप वही सामर्थ्य रखते हैं और बीमारों से और तकलीफों से आप हमें आज़ादी देते हैं। इतना ही नहीं, आप हमारे पापों से भी छुटकारा दे सकते हैं। हमारी प्रार्थना है हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो बीमारी हालत में हैं, जो तकलीफ में हैं या किसी अन्य प्रकार की परेशानियों में हैं। पिता परमेश्वर, आप उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि आपने सारे जगत से प्रेम किया है, इसलिए आप उनकी परिस्थितियों को समझते हैं। हमारी विनती है कि आप उनकी सहायता करें, उन पर कृपा दृष्टि करें, उनके जीवन की परेशानियों से आप उन्हें छुटकारा दें। जिस प्रकार आप लाजर और मार्था और मरियम से प्रेम करते थे, आज भी आप हम सब से प्रेम करते हैं। प्रभु, हम सब की सहायता करें और हमारे जीवन से अपनी महिमा लें। धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मुझको मसीह के आने का अब इंतजार है, मुझको मसीह के आने का अब इंतजार है। ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है, ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है। मुझको मसीह के आने का अब इंतजार के दीदार के लिए। लिए दिल बेतरा